तो कुछ भजन करेंगे सचमुच में किसी अनुभवी तत्वदर्शी व्यक्ति के, और भजन करेंगे देख लीजिए आपके गले में लोच नहीं बल्कि जादू आएगी जो सबको आप आकर्षण कर लेंगे। कृष्ण की भक्ति ही ऐसी है जो कभी आप हमसे मिला करेंगे और इस विषय में आप अग्रसर हो भगवान का भजन भी करेंगे तब देखिएगा कि आपकी अनुभूति कैसे है। तब ये जगत के नहीं कृष्ण स्वयं मुक्त हो जाएंगे। तो आपको बधाई है, आप बहुत दूर से आए, आपका भजन सुना सकते हैं बहुत अच्छा है। अब हम लोग अपना प्रवचन प्रसाद के लिए कर दिए, उनको थोड़ा सा प्रसाद राधिकाल कदाले नाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवानि प्रियादिना इति देखने राधे तमने माम चरणांति नियंत्रप्रजन्तमनुसेतमपेत कृष्यं द्वैपायनो विरहकार्तर्या युभाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेदे सर्वभूतहृदयं पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब जरा की व्याख्या कर रहे गोपियां देख रही हैं अपने भाव नेत्र से जो कृष्ण के चरण की रज को जो घासों में लगे हैं उनको देखकर पुलिंद कन्याएं प्रेम में भर आई और कृष्ण से मिलने के लिए परम व्याकुल हो गए। उर्गाय पदाब जराग उरु मने होता है जोर से मधुर स्वर से जो गायती जो गान करते हैं विशेष करके अपने वेणु पर श्री रघुपति राधिका के नाम रूप गुण और लीलाओं का जो अत्यंत अतिशय रूप में जो गान करते हैं इसलिए वो उरु गायती मधुर स्वर से गायन करते हैं उनके पदाब जराग को जो तिनकों में लगे हैं। पुलिंदियों के संबंध में और जानने के लिए हमारे गोविंद लीलामृत या कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में लिखा गया कि किसी समय में गोवर्धन की तराई में राधा और कृष्ण का मिलन हुआ और उसमें ललिता विशाखा इत्यादि राधा जी के साथ में है। राधा जी कहती हैं बल पौरुष में शारीरिक बल में कृष्ण हमसे सब प्रकार से बड़े चढ़े हैं, हम उनको इसमें नहीं हरा सकते, ऐसा कोई उपाय करो बतलाओ जो हम उनको किसी भी विषय में हराए। अजय कृष्ण को हराना कौन सी बड़ी भारी बात है, ठीक है पासा खेला जाए और उस पासे में उनको हराया जा सकता है, बड़ी बुद्धिमती है। श्रीमती जी ने कृष्ण को चैलेंज दिया, अच्छा आप तो कहते हैं कि हमने सबको सब विषय में हरा दिया है तो ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो आज बुद्धि की परीक्षा हो जाए, आप पासे खेलिए। बस पासा लाया गया, कृष्ण ने चैलेंज स्वीकार किया और उसमें क्रमशः पासे में कृष्ण की मुरली ले ली, पन पर रखा गया और मुरली ले ली। मुरली लेते ही मधुमंगल था, कहा जैसे तुम हार गई इसको, मुरली को हमारे प्राणों से प्यारी। कृष्ण निरुत्तर रहे, कहा जाए तुम थर और अब इसके बाद में हम इनको हराते हैं। इसके बाद और भी जो पंक्तियाँ उसमें भी हार गए। प्रार्थ्या जी ने कहा गैयों बछड़ों को चराने वाले गैयों को चराओ। बुद्धि में जहाँ पर बुद्धि की आवश्यकता है वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही करता हुआ मधुमंगल कहता कि ठीक करेंगे, अब तुम गैयों को चराओ पशुओं को चराओ। ऐसे ही बुद्धि जी जैसा चराता है उनकी बुद्धि ऐसी ही होती है। तुमने तो बंसी दे दी, इसके बाद मैंने क्या देगा, अपने को भी हार जाएगा। अंत में कृष्ण ने एक पन जीत लिया। उसमें श्रीमती जी ने ललिता जी से कहा जो उस पुलंदी को बुला लो। देखने में काली किंतु लावण्य, जिसको कृष्ण में अनुराग हो कोई भी चीज वो ऐसा वो भी सुंदर रहेगा। तो पुलिंदु को बुलाया गया गोपियों के समाज में, जहाँ पर कि कृष्ण थे और गोपियाँ थी। वो लजाती हुई सुकड़ती हुई कुछ मुस्कुराती हुई भी, और बीच में उसको लेकर के बैठा दिया कृष्ण के समीप। जब हम हार जाएंगी तो हमारे बदले में इससे आप पंग ले लेंगे। तो कृष्ण भी सब क्या गए। ऐसी ये पुलिंद कन्याएं हैं कृष्ण में अनुराग। कल हमने बताया था ना, ये चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत को देखकर उन्होंने समझा ये गोवर्धन है, पास के जंगल को देखा तो समझा कि ये वृंदावन है, समुद्र को देखा तो उसमें कूद गए कि ये यमुना है, इसी में गोपियाँ कृष्ण के साथ में रास कर रहे हैं। कूद गए, तीन दिन तक उसकी धारा में डूबते उतर आते रहे और चार पाँच माइल दूर वहाँ पर बहते बहते चले गए। और वहाँ पर जो नलिए होते हैं मल्ला, उनके जाल में से मछुआ। तो यहाँ पर चटक पर्वत तो हम देखते हैं कि वो बालू है, वहाँ के बन तो देखते हैं कि कटीले कुछ झाड़ियाँ हैं, किंतु महाप्रभु उसी को देख रहे हैं वृंदावन, उसी को देख रहे हैं गोवर्धन। तो ये किसकी विशेषता है कल हमने बतलाया। उसी प्रकार से ये गोपियाँ हैं जो उस पुलिंदी में कृष्ण का ऐसा प्रेम देख रही हैं, ये गोपियों की विशेषता है या पुलिंदी कन्याओं की विशेषता है? गोपियों की प्रेम की ये सीमा महाभावती गोपियां हैं। मान लिया है कि एक चीटी रेंगते 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 कृष्ण के कपोलों पर पहुंच गई, तो गोपियां क्या देख रही हैं? हाँ, ये चीटी का इतना सौभाग्य जे कृष्ण के कपोल जो यशोदा मैया सब समय चुंबन करती हैं, और उसका चुंबन करने के लिए चींटी यहाँ पर पहुँच गई। बात धन्य, इसको हम प्रणाम करते हैं और ये चींटी का हम जन्म लेकर के हम भी ऐसा चाहते। तो ये किसकी महत्ता है, चींटी की महत्ता है या उसकी भावना, जिसके अंदर में ऐसी भावना है उसकी भक्ति होने पर ऐसी ही भावना होती है। इसलिए ये श्लोक यद्यपि कि ये पुलिंदी के संबंध में लिखा गया है, किंतु पुलिंदी की ये महिमा नहीं, ये महिमा किसकी है जो कह रही है ये गोपियाँ, ये कह कौन रही? हमने बतलाया था या तो श्रीमती जी शंकर है, अथवा वो कह रही है जो उनकी अनुगत दासी, और दोनों प्रकार के इसमें अर्थ। ये गोपियों की महिमा इस श्लोक में है, ये महाभाव का श्लोक है, महाभाव से भी ऊपर का। यद्यपि पूर्वराग है किंतु गोपियों को कभी भी पूर्वराग नहीं होता और सब समय पूर्वराग रहता है। गोपियां कृष्ण से लाख बार मिलने पर भी उनका वह पूर्वराग जब सब समय रहता है। जैसे गुड़ है, गुड़ को साफ करके बना लो चीनी तो गुड़ नहीं रहेगा, है ना? चीनी को साफ करके ओले या सीता कोई होता है, पार्वती उत्पल उसको बना लो, फिर वो चीनी नहीं रहेगी। जैसे दूध को आंक करके उसको दही बना लो, तब फिर वो दूध नहीं रह जाएगा। और दही को मत करके मक्खन निकालो, तो फिर दही नहीं रहेगी। और मक्खन को पिघला करके घी बना लो, तो फिर वो मक्खन नहीं रहेगा, उसका सूरत बदलता जाएगा। किंतु प्रेम में ऐसा नहीं, प्रेम में श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अंगार, भाव, महाभाव, उससे भी आगे बढ़ जाएंगे, रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव, उससे भी और आगे बढ़ जाएंगे, मोहन, मोदन, अंत में मादन। किंतु श्रद्धा है, इतना होता चला गया, उसमें स्नेह रहेगा, उसमें मान रहेगा, ये सभी चीजें जो है उसमें रहेगी, कोई भी चीज नष्ट नहीं होगी, और वो ऊपर का भी भाव रहेगा। ऐसा ही ये गोपियों का प्रेम है, निराला, जगत में इसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए जब कभी किसी स्थिति में भी माँ बाप की अंतिम स्थिति रहने पर भी मान भी देखा जाता है, स्नेह भी देखा जाता है, श्रद्धा भी देखा जाता है, सभी कुछ उनमें। ये जो गोपियां हैं, प्रसंग वस्तर हम लोग विचार करते हैं तो देखते हैं इन गोपियों का कृष्ण के साथ में विवाह नहीं हुआ, चाहे जोगबाने ने नहीं करने दिया या किसी कारण से, लौकिक ये लीला है। द्वारका में कृष्ण के 16108 उन्होंने विवाह किया। रुक्मिणी की हजारों दासियां हैं, सत्यभामा की दासियां उनके पिताजी ने दासियों को दिया, वो दासियां अविवाहित थी जब दिया गई दी गई थी विवाह में। अब वो किसके साथ, किसको अपना पति मानती हैं?
कृष्ण को।
जितनी रानियां हैं, रानी ऐसी कोई नहीं है जो हजारों दासियां नहीं है, और सब उनके पिताओं ने अविवाहित अवस्था में उनको दिया, सारी कृष्ण को ही अपना पति समझते हैं। इसलिए कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं इसकी कोई गिनती नहीं। किंतु ब्रज में उनका उपनयन ही नहीं हुआ, और जब उपनयन नहीं हुआ तो विवाह नहीं हो सकता। मथुरा में उनका उपनयन हुआ, जब वृंदावन से मथुरा में गए, और उपनयन होते ही वो चले गए गुरुकुल में संदीपनी मुनि के यहाँ, और फिर वहां से लौट करके आए, तब तक जरासंध का आक्रमण हुआ, 21 बार किया, 21 वर्ष तक उसी में लगे रहे। अंतिम होने, आक्रमण होने के पहले सारी मथुरापुरी के लोगों को लेकर रात ही रात में इसलिए ब्रज में कोई विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हुआ क्यों नहीं? दो कारण। एक तो कारण ये, गोपियों का प्रेम वैवाहिक नहीं, विवाह पर निर्भर नहीं करता है, विवाह हो और न हो उनका प्रेम नित्य है। इसलिए विवाह के अधीन होकर के जो प्रेम होता है वो बधा हुआ प्रेम होता है, उसके मुहाने खदे हुए होते हैं, वो कर्तव्य ज्ञान उसमें आ जाता है, और पत्नी दासी हो जाती है और पति प्रभु हो जाता है, क्योंकि उसे खिलाता पिलाता है, अपने घर में रखता है, कपड़े देता है। किसी गोपी को कभी कृष्ण ने कपड़ा, एक दो पैसा, साबुन या कोई दिया होगा? कृष्ण कहेंगे सत्यभामा को घर से निकाल देंगे तुम्हें, तुम यदि हमारी इच्छा के विपरीत चलेगी, और यहाँ गोपियां कर सकती हैं, कृष्ण नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, अपने घर का खाती पीती और सब, किंतु प्रेम करती हैं कृष्ण से। इस प्रेम में कोई बंधन नहीं है, सीमा रहित असीम और एकदम निर्मल है। इसलिए कृष्ण अपने मुख से इसको स्वीकार करते हैं, न पारे हम निर्मल, हमारा जो मिलन है परम निर्मल है, कोई भी दाग नहीं है, कालिमा नहीं है। इसकी उपमा विश्व ब्रह्मांड में कहीं गोलोक वृंदावन तक में नहीं दी जा सकती। इसलिए इस भाव को अक्षुण्ण रखने के लिए जोग मैंने विवाह नहीं करने दिया। विवाह की सारी तैयारी हो गई थी, किंतु विवाह नहीं करने दिया, जब वो पवित्र नहीं करने दिया, नाक पर भी छिप करके गिफ्ट कराया। दूसरी बात एक ये, नंद बाबा को कितनी पत्नी थी? एक ही थी तो, दो तो नहीं। पद्मन्य जी को कितनी पत्नी थी? ब्रजभान महाराज को कितनी पत्नी थी? तो कृष्ण ब्रज में रहते थे, दो से कैसे शादी कर सकते थे? कर सकते थे? नहीं कर सकते। यह नर लीला है। एक और इससे भी बड़ी बात है। क्या बात? कृष्ण की तो करोड़ों गोपियां हैं प्यारे, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? अभी नहीं करने से नहीं चलता। क्या पर्जन्य की दो पत्नी ने उनके ऊपर वाले
थे।
तो क्या कर रहा था? तो कृष्ण की कोटि कोटि गोपियां थी, यदि किसी एक श्रीमती राधिका से शादी हो जाती तो चंद्रा भी क्या करती, ललिता जी क्या करती, विशाखा जी क्या करती? इसलिए यहाँ पर शादी नहीं हुई। नरलीला के अनुरूप भी, और दूसरी बात इसके लिए भी, राधा जी भी उनकी दासी हो जाती, और दूसरी बात और गोपियां जो उनके साथ में इतने दिन तक हैं, वो जो स्वरूप शक्ति राधिका जी के ही प्रकाश है, फिर उनका प्यार होता है। इसलिए ब्रज में नहीं करके सबके प्रति संभाव पार किए भाव सबके प्रति, इस चीज को निभाने के लिए और लौकिक नरलीलावत चलने के लिए ब्रज का जो सिस्टम है उसकी रक्षा करने के लिए गोपियों का किसी का विवाह नहीं हुआ। जो मैंने करने लिया सब कुछ हो गया, तैयारी सब, और इतने में कौन ऋषि गर्ग जी ने कह दिया जी कोई भी विवाह ये नहीं होगा, ये विवाह होने पर असंगत हो जाएगा और सभी बड़े दुखी हो जाएंगे, इसलिए ब्रज में इस वर्ष शादी हो जाए सखाओं के साथ में, ग्वाल बालों के साथ, और उस समय में ग्वाल बाल कृष्ण बने हुए हैं, इस तरह से भाव की रक्षा करने के लिए ऐसा। इसलिए ये साधारण सब बातें नहीं है। सिकुम कुमीन दैतासन मंडितेन तद दर्शन स्मर रुजतुन रुषितेन लिप्यंत आनंद कुचौ जहौ तथादि। संसार में सबसे बड़ी भारी आधी क्या है? आधी माने व्याधि, रोग, मन पीड़ा इत्यादि। संसार में जितनी पीड़ाएं हैं उन सब पीड़ाओं में काम का रोग सबसे बड़ा है। इसमें आदमी पागल बन जाता है, बुद्धिहीन बन जाता है, उसमें कर्तव्य अकर्तव्य का एकदम ज्ञान नहीं रहता, ये क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। संसारिक काम में मुग्ध होकर के कुत्ते से भी अधिक बन जाता है, गधे से भी अधिक बन जाता है, यह मन की पीड़ा। दूसरी बात, उसको आदमी संभाल नहीं सकता। तो कृष्ण के प्रति किसी का यदि ऐसा भाव हो तो वो जगत का काम नहीं, किंतु इससे भी और अधिक प्रबल होगा। उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों के लगे हुए कुमकुम को जो घासों पर है उसी को देकर के कृष्ण की ऐसी स्मृति आई जो पागल बन गई, और फिर वह रोक न सकी अपने को। उन्होंने कुमकुम को लिया और अपने अंगों में उन्होंने लगाया, और ऐसा समझा जब कृष्ण ही मिल गए। बात भी एक तरह से ठीक है, कृष्ण और कृष्ण के चरणों का कुमकुम दोनों एक है कि अलग अलग है? जब कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, सभी कुछ एक ही है, अभिन्न है, तो कृष्ण के चरणों में लगा हुआ कुमकुम कृष्ण से कैसे अलग रह सकता है? इसलिए प्रभाव इत्यादि में कृष्ण ही के समान है, इसलिए उनको कृष्ण ही समझ करके उन्होंने लगाया। लगाते ही समझा जी कृष्ण से हमें संग मिला, और साथ ही साथ में उनका काम प्राप्त दूर हो गया, हृदय निर्मल हो गया और अपने कामों में चली गई। गोपियां भाव नेत्र से इसे देख करके कहती हैं, अहो हमें ऐसा कुछ जो कभी नहीं सकता, यद्यपि वह कुमकुम नहीं कहा है तभी वो ऐसा सोच रही हैं, और ये पुनिंदी कन्या है कैसी सौभाग्यवान, हमारा ऐसा कभी भी सौभाग्य नहीं हुआ। इसलिए यदि हम मरकर पुलिंदी कन्याओं के रूप में हमारा जन्म हो, हम पुलिंदी कन्याएं बने, तो ऐसा सौभाग्य हो सकता है। उनके पिता माता नहीं रोकेंगे, किंतु ये हमारे माता पिता भाई गुरुजन सभी रोक रहे हैं, विरोधी हो रहे हैं, इसलिए हमारा ऐसा सौभाग्य। इसलिए श्रीमती राधिका जी जो कि स्वरूप शक्ति हैं, स्वयं लागनी संबित और संदनी उनके प्रकाश हैं, योग माया पूर्णिमा जी उनके एक प्रकाश हैं, ललिता विशाखा चंद्रा पद्मा इत्यादि सभी उनके प्रकाश हैं। वो स्वयं श्रीमती राधिका जी जो कृष्ण स्वरूप ही हैं, कोई भेद नहीं है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति स्मार्थ के लिए अपने बाम अंग से राधिका जी हैं और दाहिने अंग से सदाशिव वो वृंदावन में गोपीश्वर महादेव हैं। वो देखने के लिए साधक, देखने के लिए वो भक्त भाव लेकर, और ये स्वरूप शक्ति के रूप में राधा जी का प्रकाश हुआ। इसलिए राधा जी और कोई नहीं, कृष्ण ही हैं, लीला विनोद के लिए कृष्ण ही दो भागों में प्रकाशित हुए हैं। जब दोनों एक मिलकर के होते हैं तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकाशित हैं। इसलिए ये श्रीमती जी कह रही हैं कि हम कभी कहते हैं ये हिरण बन जाओ और कृष्ण के चरणों की सेवा करो, और यहाँ पर कह रही हैं मैं पुलिंद कन्या के रूप में जन्म लूँ, तो हमारा ऐसा सौभाग्य हो सकता है कि हम भी कृष्ण से ऐसे ही स्वच्छंद गति से मिल सके। इस राधा जी की जिस श्लोक में महिमा दी गई है आज यहीं तक रहे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। महामंत्र कर सकते हैं आप गान, महामंत्र हरे कृष्ण, आप हरे कृष्ण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।